नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। दिल्ली में कल लाल किला के सामने हुए कार विस्फोट में 8 लोग मारे गए हैं और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि धमाके की जांच के सभी विकल्पों को ध्यान में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही धमाकों के सही कारणों का पता चलेगा। दिल्ली में हुए धमाके के दृष्टिगत हिमाचल में भी पुलिस सतर्कता बरत रही है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। पुलिस द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आज से शिमला जिले के रामपुर बुशहर में आरंभ हो रहा है। ये मेला 17वीं शताब्दी में तत्कालीन बुशहर राज्य और तिब्बत के बीच व्यापार की दृष्टिगत शुरू किया गया था और लंबे समय तक एशिया के सिल्क रूट पर सर्दियों के मौसम से पहले एक अहम व्यापारिक केंद्र रहा। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह व्यावसायिक मेला आज भी अहम माना जाता है और इसमें आसपास के क्षेत्रों के व्यापारियों सहित दुनिया भर से पर्यटक शामिल होते हैं।
भारत तिब्बत के व्यापार की यादें समेटे रामपुर का अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आज से शुरू होगा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल मेले का विधिवत शुभारंभ करेंगे, साथ ही विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का भी अवलोकन करेंगे। आधिकारिक रूप से यह मेला 11 से 14 नवंबर तक आयोजित होगा। हालांकि मेले में खरीद फरोख्त का सिलसिला करीब एक माह तक चलता रहेगा। मेले में गर्म ऊनी कपड़ों, ड्राई फ्रूट, मसालों, कृषि औजारों सहित पारंपरिक वस्तुओं की खूब खरीदारी होती है। मेले को लेकर कानून और यातायात व्यवस्था के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मेले को लेकर रामपुर शहर और यहां बने मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। पहली सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता भी राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल करेंगे। हिमाचली लोक गायक विक्की चौहान अपने तरानों से दर्शकों का पहली सांस्कृतिक संध्या में खूब मनोरंजन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
आकांक्षी जिला चंबा में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों की 19वीं राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के 19 राज्यों के करीब 300 चिकित्सक भाग ले रहे हैं। 13 नवंबर तक इस कार्यशाला में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के महत्व, अनुसंधान और आधुनिक चिकित्सा में इसके योगदान पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजक डॉ संजीव शर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति सस्ती, प्रभावी और बिना दुष्प्रभाव वाली उपचार पद्धति है और इस पद्धति में प्रयोग होने वाली जड़ी बूटियां अपार मात्रा में चंबा में उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल में केंद्र सरकार की बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय MEIU परियोजना और प्रधानमंत्री ऊषा योजना के तहत 3 दिवसीय प्लेसमेंट बूट कैंप कल शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य MBA छात्रों की रोजगार योग्यता, कॉरपोरेट तैयारी और इंटरव्यू कौशल को मजबूत करना है। 3 दिवसीय इस प्लेसमेंट बूट कैंप में छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 1 से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में आज ऊना में और 12 नवंबर को कांगड़ा में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर के दौरान पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के अलावा आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग पर बल दिया जाएगा, जिसमें पेंशनभोगी स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। समाज में नशे के बढ़ रहे प्रचलन को रोकने के लिए प्रदेश सरकार 15 नवंबर से राज्यव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। 3 महीनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत शिमला में 15 नवंबर को राज्य स्तरीय एंटी चिट्टा वॉकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने विभिन्न खेल संघों के साथ बैठक कर युवा पीढ़ी से इस मुहिम में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिलने से मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है। हालांकि प्रदेश में इन दिनों न्यूनतम तापमान में आ रही गिरावट से लगातार ठंड बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में इस सीजन का सबसे कम तापमान ताबो में 5.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में 4 से 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केन्द्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान है। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।